हे वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 16 लिखा है बोर्ड पर, पीछे कहिए।
दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वा अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वा अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद। ब्राह्मणों ने कहा, ये निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। महाराज परीक्षित का जन्म यह अध्याय है। तात्पर्य, शिशु परीक्षित को दो कारणों से सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी विष्णु भगवान कृष्ण द्वारा बचा लिया गया था। पहला कारण यह था कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में यह शिशु निष्कलंक था। हरि हरि हरि। और दूसरा यह था कि यह शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज पुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। अरे, भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर की अगली पीढ़ी तक विनष्ट हो चुकी थी और उस समय उस महान राजवंश में कोई ऐसा न था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के दुर्निवार ब्रह्मास्त्र द्वारा उनका भी विनाश होने वाला था। यहां पर भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है और यह महत्वपूर्ण भी है। कहा ना विष्णुना प्रभ विष्णुना, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं रक्षा तो कृष्ण ने की तो विष्णुना क्यों कहा है, विष्णु का जिक्र क्यों है, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद लिखते हैं आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं और विष्णु उनके अंश है। वृंदावन में भी भगवान जब राक्षसों का संहार करते हैं तो ये कृष्ण का कार्य नहीं बल्कि ये विष्णु का कार्य है, ऐसा ऐसी मान्यता ऐसी समझ है। बाहर से तो कृष्ण ही अघासुर बकासुर आदियों के साथ युद्ध करते दिखाई, हम लोगों को देख दिखाई देते हैं, किंतु ऐसे उस समय ये विष्णु रूप में उनके साथ भगवान युद्ध करते हैं। मथुरा से भगवान वृंदावन से भगवान मथुरा आते हैं, वैसे वह कृष्ण नहीं है, वो वासुदेव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर वहां से भगवान द्वारका भी आते हैं तो वृंदावन और मथुरा के भगवान से और विभिन्न होते हैं, लेकिन बाहर से तो वैसे ही दिखाई देते हैं। विठल भगवान की मूर्ति श्रील प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में चतुर्भुज विग्रह है, लेकिन वैसे करकटावरी ठेवनिया दो ही हाथ हम देखते हैं उनके। भगवान जब श्री कृष्ण भगवान जब पृथ्वी पर पधारने के लिए तैयार ही हो रहे थे, गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथों में ये इस प्रकार वर्णन आता है कि जब भगवान तैयार ही थे संभवामी युगे युगे, तब कई सारे अलग अलग ब्रह्मांडों से कई सारे अवतार, वराह नरसिंह नरसिंह राम इत्यादि गोलोक की ओर प्रस्थान करते हैं और कृष्ण के रूप में वे प्रवेश करते हैं, तो वे उन्हीं के विस्तार है। अहम सर्वश प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति माम बुधा भाव समन्वितः। उन्हीं के विस्तार है अलग अलग अवतार, अहम सर्वश प्रभवः, तो कृष्ण अवतार ऐसे अवतारी कृष्ण अवतारी है, तो कृष्ण अवतारी जब प्रकट होने के लिए तैयार हो ही रहे थे तो ये सारे अवतार उनमें प्रवेश करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हो गए श्री कृष्ण। फिर आवश्यकता के अनुसार ये अलग अलग अवतार अपनी लीला करते हैं खेलते हैं, और अलग अलग लोकों के वैकुंठ में कई सारे भिन्न भिन्न लोक है, वराह लोक या नरसिंह लोक और अवतारों के लोक, तो वहां के लोग उन लोकों के जो लोग है भक्त है वे वैसे समझ, देखो देखो हमारे तो भगवान यहां लीला कर रहे हैं, हमारे लीला हमारे प्रभु या लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा सभी लोकों का लोकों के लोगों का ध्यान भगवान के लीलाओं की ओर होता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला उनकी हुई। 21 घंटों तक ये लीला चली। तो असंख्य भक्त उपस्थित थे। ये श्रीवास ठाकुर के आंगन प्रांगण निवास पर ये लीला का प्रदर्शन हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहां के उपस्थित हर भक्त को उसके उसकी जो भी स्थिति है आध्यात्मिक जगत में और जिस प्रकार का रस या संबंध है उसके अनुसार दर्शन दे रहे थे। मुरारी गुप्त जब देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु की ओर तो उनको चैतन्य नहीं दिखाई दे रहे थे, वहां श्री राम को देख रहे थे, क्योंकि मुरारी गुप्त हनुमान के अवतार, हनुमान ही मुरारी गुप्त बन के प्रकट हुए थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बने थे। तो वह इस महाप्रकाश लीला से भी स्पष्ट होता है। और यहां तो केवल कृष्ण ही नहीं राधा भी है, राधा कृष्ण न है अन्य। कृष्ण तो 5000 वर्ष पूर्व, कृष्ण में राधा नहीं है, राधा अलग से है। कृष्ण प्रकट हुए राधा भी प्रकट होती राधा भाव सुवलितम, राधा भाव और राधा की कांति। तो चैतन्य महाप्रभु में अन्य अवतार भी तो है ही और साथ में राधा भी है। यशोदा जब राम की कथा सुनाती है कृष्ण को रात्रि के समय, कन्हैया तब तक सोएंगे नहीं जब तक यशोदा एक कहानी नहीं सुनाती। तो यशोदा जब सुनाती है बहुत पहले के बेटा, बहुत पहले की बात है, त्रेता युग की बात है। तो पंचवटी की बात है, नासिक की बात है, गोदावरी का तट था, वहां पर एक राक्षस आया और सीता का हरण करके लंका की ओर उसने प्रस्थान कर ही रहा था। जटायु आए, तो कृष्ण जब जय श्री गौरीदाय की जय, सीता हरण का वर्णन यशोदा सुनाती है कृष्ण को, तो कृष्ण अपूर्व शैया पर जो गोविंद कन्हैया अब विश्राम करने की तैयारी में ही थे, तो वहां से कूद पड़ते हैं। अब कौन, किसने क्या कहा तुमने? किसी राक्षस ने सीता का हरण किया। और राम भाव में आते हैं, राम भाव प्रकट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस समझा बुझा के पुनः लिटा देती है यशोदा कन्हैया को। तो कृष्ण में राम है, कृष्ण में सभी है, कृष्ण पूर्ण है। तो कृष्ण में विष्णु भी है, इसलिए विष्णु ना प्रभ विष्णु ना कहा है। विष्णु ने रक्षा की परीक्षित महाराज की अपनी मां के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में। फिर पुनः दो कृष्ण जन्मे, ये भी एक ऐसे इतिहास ही है। देवकी ने जन्म दिया देवकी नंदन को, तो यशोदा ने भी एक बालक को जन्म दिया गोकुल में, यशोदा नंदन। दो कृष्ण जन्मे थे। तो वसुदेव जब वासुदेव को मथुरा से गोकुल ले आए तो वहां वैसे दो, एक बालक और एक बालिका को जन्म दिया था यशोदा ने। पहले जन्म दिया था बालिका को योग माया जो थी, और आई थिंक अदर वे अराउंड, अनुजा, कृष्णानुजा कहा योग माया, कृष्ण अनुजा। तो पहले कृष्ण को, पहले बालक को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया गोकुल में यशोदा ने जन्म दिया, और फिर योग माया को कहा कृष्णा अनुजा, कृष्ण अनुजा जा मतलब जन्मी हुई, जन्म से जा होता, और अनुजा मतलब किसी के बाद उपरांत, पहले एक ने जन्म लिया फिर अनुजा, जैसे अनुग किसी के पीछे जाने की बात, अनुग अनुरूप उसके उसके अनुसार, तो अनुजा, तो दो वहां मैं एक बालिका एक बालिका एक बालक बालिका। तो वसुदेव जिस बालक को लाए थे वो बालक प्रवेश करता है यशोदा नंदन में, प्रवेश यशोदा नंदन कृष्ण में प्रवेश होता है, तो फिर दो कृष्ण के एक खाव है कृष्ण। और फिर बालिका को, कृष्णानुजा को जो योग माया थी, मथुरा जब पहुंची तो उसने दुर्गा का रूप भी धारण किया, और योग माया के प्राकट्य के पहले ही भगवान ने वैसे कहा था तुम 11 अलग अलग नामों से जानी जाओगी, 11 रूपों में प्रसिद्ध होगी तुम, तो उनके नाम भी कहे थे, तो उसके अनुसार वो रूप धारण करती है योग माया। भगवान के धाम की आध्यात्मिक शक्ति योग माया शक्ति, यह दुर्गा इत्यादि रूपों में यहां प्रकट होती है, यह राधा की योग माया की छाया है, ये दुर्गा इत्यादि जो रूप है। छाए वयश भुवनानि विभर्ति दुर्गा कहा है। तो यस, तो कृष्ण से ये अलग अलग अवतारों के विस्तार होते हैं, तो राधा रानी से अलग अलग भगवान की जो आह्लादनी शक्तियां है उन में प्रकट या विस्तारित होती रहती है। तो द्वारका में जो रानियां हैं भगवान की 16108, वो भी कोई साधारण स्त्रियां तो है नहीं, ये संसार की कोई जीवात्मा वो नहीं है, भगवान की आह्लादनी शक्ति, तो सभी को एक एक को जुटाए भगवान, अलग अलग स्थान पर वो जन्म लेते हैं, कौंडिन्यपुर में किसी का जन्म, तो जाम्बवती, सत्यभामा, सत्या, कालिंदी तो वृंदावन में जमुना के जल में ही अपना निवास बना के रहती थी, तो एक मद्रास की ओर जन्मी थी, एक अवंतीपुर, सत्या अवंतीपुर में, कौशल देश में जो अयोध्या की ओर, तो ये 8 अलग अलग, और फिर 16100 का एक अलग टीम है, तो ये, लेकिन ये साधारण स्त्रियां नहीं है, जैसे हमारे षड गोस्वामी वृंद भी कहां कहां जन्म लिए, मुसलमान दबीर खास और सक्कर साकर मल्लिक हुए, लेकिन ये है कौन, ये मंजरिया है, रूप मंजरी और क्या क्या मंजुलाली मंजरी लोकनाथ गोस्वामी थे, तो इन्होंने भी कहां कहां जन्म लिया, और मिनिस्टर्स बने हैं, लेकिन ये है तो भगवान के शाश्वत परिकर। तो 16108 जो भगवान की महिषिया है द्वारका में, ये सारी भगवान की, ये सारी अल्लादनी शक्तियां है, भगवान की अल्लादनी शक्तियां है। पहले तो राधा रानी भगवान की अल्लादनी शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है, उस शक्तिमान के शक्तिमान की शक्ति होती है, या शक्तिवान, शक्तिवान कहते हैं, कहीं नहीं कहते, शक्तिमान कहते हैं, बुद्धिमान, कुछ वान तो कुछ मान, जैसे कोई नियम है, मान का प्रयोग करना है और वान का प्रयोग करना है, शक्तिमान शक्तिवान। धनवान ठीक है लेकिन शक्तिवान नहीं होता, शक्तिमान होता। तो राधा रानी भगवान की अल्लादनी शक्ति है। फिर जब राधा रानी का जब विस्तार हुआ, भगवान की शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति की वो व्यक्ति बन गई, राधा रानी बनी, तो फिर अब कृष्ण के और विस्तार होते हैं और राधा रानी के भी और विस्तार होते हैं। तो द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के विस्तार है और वहां की जो महिषिया है वो राधा रानी के विस्तार है। फिर वैकुंठ की ओर जाएंगे तो वहां के जो अलग अलग अवतार है वे कृष्ण के विस्तार है, पोर्शंस और प्लेनरी पोर्शंस ऑफ द प्लेनरी पोर्शन, ऐसे प्रभुपाद कला अंश एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो हर भगवान की, हर अवतार की फिर अल्लादनी शक्तियां है और वो राधा की विस्तार है। तो इधर कृष्ण विस्तार करते हैं, अवतार बनते हैं, और यहां राधा रानी विस्तार करती है और उनकी अल्लादनी शक्तियां बनती है। तो राधा कृष्ण की जैसे जोड़ी वृंदावन में है, तो इस प्रकार हर लोक में, वैकुंठ लोक में लक्ष्मी नरसिम्हा विष्णु लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण, ये तो नारायण हो गए कृष्ण और लक्ष्मी हो गई राधा रानी। तो इस प्रकार ये विस्तार होते रहते हैं। यशोदानंदन तो हो गया, यशोदानंदन तो उतना ही था, उतना कहना था। पूर्ण भगवान कृष्ण के सारे विश्वव्यापी कार्य कलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। शिशु परीक्षित को यहां पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के संदेश को संपन्न करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। भगवान चाहते रहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सके। इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करते हैं, जैसे भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां ये भगवान की रचना है, या गीता है, अन्य ग्रंथ है। जीवेर नहि स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो बद्ध जीवों को न खुद का ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हर प्रयास जीव बद्ध जीव करते हैं, लेकिन उनको किसका ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है। स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं है, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण, ऐसे जीवों पर कृपा करने हेतु भगवान ने ये वेद पुराणों की रचना की, शास्त्रों की रचना की। जिसको नहीं पढ़ेगा मनुष्य तो खुद को कभी नहीं जानेगा, खुद को कभी नहीं पहचानेगा, तो भगवान को भी नहीं पहचानेगा, संभव ही नहीं है, कैसे पहचान सकता। भगवान के संबंध में सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो कैसे जान सकता है। तो ये दो कल रात्रि को हम लोग चर्चा कर रहे थे, दो प्रकार के शब्द। तो ये संसार के भी शब्द हैं, संसार का कई, और फिर ये आध्यात्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक शब्द है। तो आध्यात्मिक शब्द वैसे ये संसार के है भी नहीं, आध्यात्मिक शब्द ये संसार के नहीं है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसको आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये स्थान या ये जो भी दृश्य या कोई गीत या नाम भी हो सकता, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जगत का है नहीं। मैं जब दक्षिण अफ्रीका के डर्बन, इस्कॉन डर्बन मंदिर में जब प्रवेश किया फर्स्ट टाइम, कुछ 10-15 साल पहले की बात, इतना सुंदर, मैंने तो इस्कॉन के कई मंदिर देखे थे लेकिन उस मंदिर वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वैसे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो मैं पहले भी कहता था ये टर्म, लेकिन वहां जब मैंने प्रवेश किया तो वैसे मुझे समझ में आया कि किसको कहते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मैं एयरपोर्ट से आ ही रहा था मंदिर की ओर, और दूसरा वर्ल्ड था, दूसरा जगत था, लेकिन मंदिर में जब प्रवेश किया, राधा राधा नाथ शायद वहां के विग्रह, और इतना सुंदर, इतना विशाल नहीं है लेकिन इतना सुंदर से उसकी दिव्यता, लौकिकता और उसका सौंदर्य, वहां का सब इंटीरियर डेकोरेशंस और शैंडेलियर्स, और भगवान के कई सारे चित्र थे, कृष्ण बुक वैसे, और कई सारे मिरर्स, शीशे थे, लगा शीश महल जैसा कुछ अनुभव भी था। तो जब मैंने वहां प्रवेश किया तो दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज प्रभु, डीटीज भी समक्ष थी, प्रभुपाद की मूर्ति, और भक्त भी बड़े उत्साह के साथ, कुछ अफ्रीकन्स भी थे, नृत्य कर रहे थे, अफ्रीकन्स आर वेरी गुड इंथुजियास्टिक डांसर्स। तो सब अनुभव करके, वैसे सभी का मिलाप कहिए, तो डीडीज और वहां का सब मंदिर का डिजाइन, वातावरण, मुझे ये स्थान इस जगत का नहीं है, इस जगत के परे का ये स्थान है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब दूसरा वर्ल्ड ही वह प्रकट होता है, डिसेंड्स। तो बाहर के जगत का जगत स्थापित होता है, अवतरित होता है, प्रकट होता है, वो स्थान प्रकट होता है, या फिर व्यक्ति प्रकट होते हैं, या नाम भी प्रकट होता है। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कृष्ण, कृष्ण किसका नाम है, कृष्ण का नाम है, तो ये कृष्ण कृष्ण वैसे संसार में तो संसार का नाम नहीं है, कृष्ण ये शब्द इस संसार के नहीं है। वैसे हम लोग क और क्री और श हैफ ण अक्षर तो जिसको हम लोग सीखते हैं, क ख ग घ आ ई वो ऐसे लगते हैं जो सब संसार सीखता है, लेकिन जब कृष्ण कहते हैं, कृष्ण लिखते हैं, तो ये कृष्ण नाम ये संसार का नहीं है। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 पाही माम रक्षा माम। तो ये कृष्ण इस संसार का शब्द नहीं है कृष्ण। तो उस संसार में हमें ले जाने के लिए ये भगवान ने रचना की है, भगवान चाहते हैं okay। इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करते हैं, संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, इस साहित्य को का वितरण करते हैं। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं, इस शब्द को फिर शब्द के वाक्य बनते हैं। तो जिस शब्द में कृष्ण है वो वाक्य भी कैसा हुआ, दिव्य हुआ, अलौकिक हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों के लिखे हुए कुछ लेख जब देखते थे तो उसमें कई सारी व्याकरण की दृष्टि से त्रुटियां भी हुआ करती थी, लेकिन उनकी ओर ज्यादा नहीं ध्यान देते थे। कितनी बार कृष्ण कृष्ण चैतन्य कितनी बार आया है, चैतन्य महाप्रभु राम कितनी बार वहां है, हा वेरी गुड वेरी गुड वंडरफुल, कृष्ण कृष्ण से भरा हुआ है। प्रतिश्लोकम अबद्धवत्तपि कहा, श्लोक में कोई रचना ठीक नहीं है, कुछ त्रुटि है, लेकिन वो क्या है, यशो अंकितानियत नामानि अनंतस्य यशो अंकितानियत, उसमें नाम है नामानि अंकितानि और यश भी है, भगवान का नाम गुण रूप लीला का उसमें वर्णन है। तो गृणन्ति साधवा श्रणवन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा, साधु खूब उसको श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसको धारण करते हैं, उसको फैलाते हैं, प्रचार करते हैं। तो अबद्धवत्तपि का उसमें कोई पंक्तियों में कोई दोष है, त्रुटि है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन यशो अंक नामानि यश अंकितानियत नामानि यशो अंकितानियत, तो फिर वो उसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। तो ऐसी कही हुई बातें भी सारी अलौकिक है। तो हम लोगों को बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए संसार के बंधन और हृदय ग्रंथि जो है, हृदय ग्रंथि कहा है, नॉट्स इन द हार्ट, नॉट्स है, कई सारी नॉट्स है, गाठ है, क्योंकि आशापाश शतैर बद्धई है, कई प्रकार के आशा के पाश है और गृह है, हमारा घर बंधन क्षेत्र, गृह क्षेत्र, वित्त अप्त, ये सब इतने प्यारे बच्चे हैं, तोतली जब भाषा बोलते हैं तो वेदों की वाणी मानो मम्मी को सुनाई दे रही है, तो कठिन है। ऐसे बंधन में नहीं पढ़ना कठिन, नहीं पढ़ना कठिन है, हमने कहा मतलब ऐसे भाव बंधन में आसानी से हम लोग गिर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हुआ तो ये हृदय ग्रंथि को छिंदंती, उसको तोड़ देगी। तो जहां जहां बंधन है, जहां जहां गांठ है, वहां वहां ये जो शब्द, ये साउंड वाइब्रेशन है, वहां पहुंचेगा और वहां उसकी एक्शन शुरू होगी। हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, हृदय अंतस्थ, हृदय में भी जहां भी द कोर द बॉटम ऑफ द हार्ट, इसका मतलब गहराई में जाके वहां वहां वो एक्शन शुरू कर देगा। जैसे क्या एस्प्रिन की एक्शन होती है, एस्प्रिन एस्प्रो, पहले कभी हम 30 जब भी हम लोग एक बार देखते थे वो उसका एक्शन दिखाते हैं। लंग्स में क्या करता है विक्स, क्या विक्स वेपर ऑफ पाउडर, एक्शन 500 आई डोंट नो, लेकिन विक्स वेपर ऑफ कैसे वो दिखाते हैं कैसे लंग्स में, फिर जो उसकी शाखा, फिर ऊपर शाखा, फिर अल्टीमेटली लिटिल स्मॉल टाइनी ट्यूब्स वगैरह होती है यहां पर सब ऑक्सीजन पहुंचता है ना, तो उसमें कोई कंजेशन हुआ है, कुछ हुआ है सांस में, कोई कष्ट या और भी कोई विकृतियां आई है, डिस्टॉर्शंस, तो ये उनका विक्स वेपर क्या करता है वहां वहां पहुंचकर एवरी नूक एंड कॉर्नर में जाके वहां वहां क्या करता है वो एरो दिखा रहे से 500 फाइटिंग, ओके फाइटिंग, यस उधर से फाइटिंग, फिर उधर से फाइटिंग। तो ये जो आध्यात्मिक जो साउंड है, और फिर उसमें भी ये जो हरि नाम, ये बहुत बड़ा कॉम्पैक्ट साउंड है, कॉन्सेंट्रेटेड साउंड है, वैसे पुराण उतने नहीं है। पुराण में आपको कृष्ण का नाम कभी कभी मिलेगा, तो बीच में काफी ऐसे ही पुराण ही है, इसलिए उसका वैसे महात्म्य कम कहा गया है। कई कई पर फिर और भी कोई थोड़ी साधारण सी बातें आ जाती है, कोई सामाजिक और उसमें ये अन्य विषय आते हैं। कृष्ण रिलेटेड तो है लेकिन थोड़ा डिस्टेंट कनेक्शन होता है। वेदों में, पुराणों में कुछ त्रिगुणमयी बातें भी आ जाती है, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन, ये समझना वैसे कठिन है। हम लोग वेद वेद तो कहते हैं वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, वैसे जीव गोस्वामी कहते कि वेद को नहीं पढ़ना चाहिए, या कलयुग में वेद नहीं पढ़ने चाहिए, वेद कलयुग के लिए है नहीं, कहते पुराण कहते हैं। फिर पुराणों में भी 17 पुराण नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, 18वां पुराण पढ़ना चाहिए, जो कौन सा है श्रीमद् भागवत है। तो अन्य पुराणों में, अन्य वेदों में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का खूब चर्चा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वासुदेवश महिमा ही न अनुवर्णिता, उसमें वासुदेव का वर्णन कम मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें अधिक, चर्चा अधिक होगी, और वासुदेव का महिमा कहां है। ये सारे ग्रंथों की रचना तो श्रील व्यासदेव किए थे लेकिन प्रसन्न नहीं थे, देयर इज नो जॉब सेटिस्फैक्शन। कई लोग जॉब करते हैं लेकिन नॉट सेटिस्फाइड, तो श्रील व्यासदेव का भी जो जॉब हुआ था अब तक, जो जॉब किया उन्होंने, नॉट सेटिस्फाइड, बड़े निराश उदास बैठे थे बद्रिकाश्रम में। इतने में आ गए नारद मुनि, ओ क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, शिष्य को पूछ रहे, श्रील व्यासदेव नारद जी के शिष्य है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे ग्रंथ लिखे हैं लेकिन आई एम नॉट सैटिस्फाइड। तो श्रील व्यास नारद मुनि, जैसे बुक रिव्यूज होते हैं ना, बुक रिव्यू फिर छपते भी अखबारों, बुक रिव्यूज अभिप्राय, क्या कहते हैं अभिप्राय, बुक रिव्यूज, बुक रिव्यू समझते कि नहीं, बुक रिव्यू समझते, लेकिन आप हिंदी नहीं समझ, उसका हिंदी में नहीं कह सकते, इतना प्रचलित बुक रिव्यू हो गए, बुक रिव्यू हिंदी हो गए। तो तो नारद मुनि ने बुक रिव्यू किया उनके सारे ग्रंथों का, सारे ग्रंथों की रचना की थी, एक की रचना नहीं हुई थी। जैसे वैदिक वांग्मय जिसको कहते हैं, वैदिक वाक्मय वांग्मय साहित्य, सब की रचना हुई थी तो भी प्रसन्न नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आपने तो खूब धर्मार्थ काम मोक्ष पर इतना विशेष प्रकाश तो डाला हुआ है, लेकिन वासुदेव की महिमा कहां है? तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के उन्होंने और एक ग्रंथ की रचना की, और वो है श्रीमद् भागवत, जिसमें आदौ मध्ये अंते हरि सर्वत्र गीयते कहा। इसके शुरुआत में, मध्य में, अंत में, हर अक्षर में, हर शब्द में, हर वाक्य में क्या है? हरि का गान है, हरि का यश गान है। तो ऐसे हरि के यश गान वाले जो ग्रंथ है, साहित्य है, शब्द है, ये शब्द ब्रह्म है और ये हमको मुक्त करेंगे, क्योंकि ये शब्द आए हैं कहां से? चर्चा वैसे हो रहेगी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, उस जगत के हैं, उस जगत की वाणी है, भगवान के धाम के वे विचार है, वो वाक्य है, वो वचन है, वो शब्द है। तो हमको हमको वो आध्यात्मिक बनाएंगे, आध्यात्मिकीकरण होगा, स्पिरिचुअलाइजेशन, कृष्णाइज्ड हम तब होंगे जब वहां के आए हुए। वैसे अंत में शब्द ही तो हम लोग अथॉरिटी कहते, साधु शास्त्र आचार्य अथॉरिटीज है, साधु शास्त्र आचार्य। लेकिन हर एक से हमको प्राप्त क्या होता है? साधु से भी प्राप्त होता है तो क्या, शब्द ही तो प्राप्त होता है। साधु का दर्शन मतलब केवल कितना मोटा या तगड़ा या दाढ़ी या तिलक, वो देखने मतलब दर्शन नहीं है। दर्शन मतलब साधु का श्रवण ही दर्शन है, या षड दर्शन अलग अलग। तो साधु है, ये शास्त्र है, आचार्य है, इन सभी से प्राप्त क्या होता है? हमको शब्द प्राप्त होता है, या उनसे हमको मंत्र प्राप्त होता है, ये भी अच्छी बात है। वैसे हमको गुरु क्या करते हैं? शब्द भी देते हैं, प्रवचन भी, ये सब आध्यात्मिक है, और फिर मंत्र देते हैं भगवान के धाम का, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का जो मंत्र है उसको देते हैं। तो शिष्य जीवन भर उस मंत्र के आश्रय से अपनी साधना करता है। नामाश्रय करी जतने तुमी ताकहो आपनो काजे। एक बार मंत्र दिया, मंत्र देने में तो कुछ एक दो मिनटों का कार्यकलाप रहा, लेकिन शिष्य जीवन भर उन शब्दों का, वो जो शब्द ब्रह्म है, उसके आश्रय में रहता है। जब भी देखा माला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण गेट आउट, हरे कृष्ण और शब्द या और इस शब्द, इस संसार के जो शब्द है, इस संसार के जो शब्द है, हमें क्या करते हैं? बंधन में डालते हैं। इसलिए बचना चाह रहे, नो राम 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 राम। हम लोग उन ग्राम कथाओं से साधक बचना चाहता है, या उस प्रजल्प से, प्रजल्प संसार के शब्द, ग्राम कथा इस संसार की कथा, राजनेता अभिनेताओं की कथा है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर् भक्ति विनश्यति। भक्ति का नाश होगा, कुछ थोड़ी प्राप्ति हुई थी बहुनाम जन्मनाम अंते के बाद, या ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव तो भगवान ने हमको बनाया, तो गुरु कृष्ण प्रसाद ही पाए, कुछ भक्ति लता बीज तो बोया है उन्होंने, लेकिन उस बोए हुए बीज को अंकुरित कराना है, और ये जो लता है उसको बढ़ाना है, उसका लालन पालन, और अंत में उनको उसके फल चखने को मिलेंगे कृष्ण प्रेम के, तो इसके लिए आवश्यकता है उस बीज पर सिंचन करना, सिंचाई की आवश्यकता है, वाटरिंग दैट सीड। तो वाटरिंग कैसे होता है, या जल या खाद चाहिए वो कैसे होता है, ये श्रवण कीर्तन से होता है, सत्संग से होता है, साधु संग से होता है। तो साधु संग में होता क्या है, बोधयंतः परस्परम होता है, तो उससे ये बीज जो है अंकुरित होता है। किसान भी प्रतीक्षा करते हैं वर्षा की, वर्षा होते ही फिर अपने बीज को बो देता है, लेकिन गर्मी के दिनों में फिर उसको एक बीज के अनेक बीज मिलते हैं, फल मिलता है, लेकिन उसको ऐसे खेत में और ऐसे समय गर्मी के दिनों में, और भी पथरीला इलाका है, तो वहां बीज बोएगा तो क्या होगा, उस बीज का पॉपकॉर्न बन जाएगा, पॉपकॉर्न जानते हो, तो एक था वो भी चला गया, या वो उसको खा सकते, फिनिश्ड, और कुछ नहीं। तो बीज तो प्राप्त हुआ है, भक्ति लता बीज, बहुत जन्मों जन्म जन्मांतर के उपरांत और ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, नाना योनियों में फिर रहे थे, घूम फिरने के बाद फिर ये प्राप्त हुआ। तो ये प्रजल्प से, ग्राम कथा से, अन्य बातें भी है, प्रजल भी है, मतलब संसार के शब्द जो है, साउंड, इस जगत का जो साउंड, इस जगत के जो शब्द है, इस जगत के शब्दों को सुनने से हम लोग इसी जगत में रह जाएंगे, इस जगत में एक्सपर्ट तो हो जाएंगे, लेकिन इस जगत के बाहर नहीं जा सकते। यू कुड बी वेरी एक्सपर्ट, इट्स वेरी प्रोफेशनल, इट्स वेरी एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, दैट फील्ड, इज यस फाइन, लेकिन इस जगत के बाहर नहीं जा सकते। एक्सपर्टीज अगर इस जगत की है तो इस जगत में रह सकते, दैट्स नाइस, दैट्स ओके, इफ इट इज ओके फॉर यू। दिस इज कैद खाने में, जो कैद खाने के जो अधिकारी है, कोई कंबल देने वाला कोई है, कोई रोटी देता है, क्या देता है, कमरे का अलॉटमेंट करता है, उनको प्रसन्न करेंगे तो क्या करेंगे, आपको कंबल दे सकते हैं, या आपको ट्रांसफर कर सकते हैं कहां से कहां, फ्रॉम थर्ड क्लास प्रिजन टू फर्स्ट क्लास प्रिजन, लेकिन बाहर तो नहीं आया, ट्रांसफर तो अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो रहे, ट्रांसफर चल रही है, प्रमोशन चल रहा है, गो अप टू स्वर्ग लोग भी जा सकते हैं, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति पुनः आ रहा है, मतलब अंदर ही अंदर उसको खुशामद करने से, कुछ स्तुति करने से, देवताओं की स्तुति करते, हाँ हाँ ठीक है, यहां तो आपका ठीक ठाक चलेगा, आपको ज्यादा रोटी मिलेगी, लेकिन बाहर नहीं जा सकते, जेल के बाहर नहीं जा सकते। तो जेल के बाहर जाना है तो जेल के या संसार के, संसार भी एक जेल है, संसार भी कैद खाना है, तो इसके बाहर जाना है तो इस बाहर के, इस संसार के परे का जो जगत है, वहां से आने वाला जो साउंड है, शब्द है, उसके संपर्क में अगर हम आते हैं तो फिर वो शब्द हमको, वो शब्द जहां से आए हैं वहां हमको वो शब्द ले जाएंगे, हमको ले जाएंगे उस जगत में, उस जगत में पहुंचाएंगे जिस जगत से वो शब्द आए हैं। तो ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्दों का जो प्रचार प्रसार करते हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, जो करते हैं, जो कृष्ण के बारे में बोलते हैं, जो महात्मा, जो भक्त, जो जिम्मेदार है इसको, कृष्ण भक्ति के प्रचार और प्रसार के लिए, भज कृष्ण, भजन पूजन के लिए, और कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा के लिए, तो ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, ये बात की चर्चा या तात्पर्य प्रभुपाद समझा रहे। कौन सा श्लोक था, इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करते हैं, संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। पहले शास्त्र की रचना करते हैं, फिर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और फिर वो प्रतिनिधि उन शास्त्रों को समझाते हैं। द साइंस भगवत प्राप्ति का शास्त्र समझाने वाले गुरु की रचना करते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलुष होते हैं, क्योंकि भौतिक गुणों का कलमश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब परमहंस ऐसे भक्त क्या कहलाते हैं, परमहंस कहलाते हैं। परमहंस जैसे हंस भी पानी में तो रहता है लेकिन उसे पानी उसको छूता नहीं है। जैसे हंस के जो पंख होते हैं कभी गीले नहीं होते, पानी में तैरता है, तो ट्रांसेंडेंट। या जैसे नवनीत मक्खन जो है, एक बार हमने वो दही का मंथन करके मक्खन तैयार किया, वो दही में ही छाछ, अभी दही का छाछ हुआ, छाछ में है लेकिन वो ऊपर तैरता रहेगा। इसको दुबाने का प्रयास भी करेंगे तो पुनः ऊपर आएगा। तो ये परमहंस, तो परमहंस तो किसी भी स्थिति में रहकर उस स्थान से प्रभावित नहीं होगा, या औरों के विचारों से प्रभावित नहीं होगा। वो तो प्रभावित पहले ही हो चुका है, शब्द ब्रह्म से प्रभावित हो चुका है, अब और प्रभावित उसको कोई नहीं कर सकता। तो ये बात हो गई, फिर निष्ठा की बात हो गई। जिसके पास केवल श्रद्धा ही है, आदौ श्रद्धा, तो श्रद्धा कोमल श्रद्धा होती। शुरुआत में श्रद्धा कैसी होती है, कोमल होती, कोमल की दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तो परमहंस भक्तों की श्रद्धा कैसी होती है, दृढ़ श्रद्धा होती, दृढ़ पक्का, कोमल दृढ़ श्रद्धा। तो कोमल श्रद्धा का रूपांतर दृढ़ श्रद्धा में करना है। तो ये कैसे, क्या क्या करने से फिर दृढ़ श्रद्धा, फिर दृढ़ श्रद्धा जब हुई तो फिर पक्का हो गए। फिर संसार का कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति उसको परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके विचारों में, उसकी जो दिशा उसने अपनाई है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, यू टर्न नहीं लेगा। तो वो निष्ठा कहलाती है, दृढ़ श्रद्धा। तो वो प्राप्त होती है नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकीका, निष्ठावान भक्ति, दृढ़ श्रद्धा। तो कई लोग आते हैं, भक्त आते हैं, इस्कॉन में भी आते हैं, उसमें से कुछ चले जाते हैं, तो रहते कौन है, कौन रहेंगे और कौन चले जाएंगे, हम लोग कह सकते हैं। जिसकी श्रद्धा के साथ, कुछ श्रद्धा के साथ आए थे, तो उन्होंने अपनी श्रद्धा को, उस कोमल श्रद्धा को दृढ़ श्रद्धा में उसका रूपांतर नहीं किया। तो हर भक्त को जिसकी श्रद्धा अब तक दृढ़ नहीं हुई है, उसको समझना होगा कि मेरी स्थिति कुछ, अब मैं अभी तक डामाडोल ही है, मतलब कोई व्यक्ति या कोई विचार या कोई परिस्थिति मुझको परास्त कर सकती है, या मुझे भक्ति के पथ से हटा सकती है। तो ये ऐसी भयानक स्थिति है, वैसे ये डेंजरस सिचुएशन। तो अधो श्रद्धा, फिर वैसे बताया सोपान अलग अलग है, अधो श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और फिर निष्ठा। ये सोपान है, इतना सारा करना होगा, फिर निष्ठा होगा, निष्ठावान। श्रद्धावान से केवल नहीं काम चलेगा, श्रद्धा तो भगवान की ओर आना या भक्तों की ओर आने के लिए श्रद्धा ठीक है, लेकिन निष्ठा, फिर पक्का हो गया काम। तो श्रद्धा से निष्ठा तक पहुंचने के लिए साधु संघ है, साधु संघ। हरे कृष्ण आंदोलन की व्यवस्था ही साधु संघ के लिए हुई है, साधु संघ प्राप्त कराने के लिए। और श्रील प्रभुपाद इतना साधु संघ की व्यवस्था किए हैं, जब इस हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना और सब योजना बन रही थी, बना रहे थे श्रील प्रभुपाद। तो कल रात्रि को भी हम लोग कुछ 11 तो बज ही, सत्संग तो हो ही रहा था, फिर पुनः हम लोग उठे हैं और ये मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम, इसमें साधना हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हम लोग, हमारी श्रद्धा क्या हो, दृढ़ श्रद्धा हो। तो ये साधु संघ से, और साधु संघ में जब आते हैं तो भजन क्रिया, भजन भजन ऐसा करना चाहिए। भजन रहस्य नाम का एक भक्ति विनोद ठाकुर ग्रंथ भी लिखे हैं, भजन 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 क्रिया। तो भजन मतलब केवल गीत गा रहे हैं, वही भजन नहीं। और कीर्तन भजन होगा, सच आइए कीर्तन में आइए, भजन भजन भी होगा तो वो भी भजन है। लेकिन भोजन भी वैसे भजन ही की एक क्रिया है, तो भजन भी है, भोजन भी है, कथा है, चर्चा है, परिसंवाद है, ये सारा भजन है। कभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, पंढरपुर गए, वृंदावन गए, और कई, ये भी भजन ही है। जप कर रहे भजन है, अध्ययन कर रहे ये भजन है, और पूजा अर्चना कर रहे, क्या व्हाट हैपन जस्ट नाउ, तो वह ये सारा भजन है। तो भजन क्रिया मतलब सारी वैधी भक्ति की साधना, ये सारी भजन क्रिया कहलाएगी। तो साधु संघ में आएंगे, सत्संग में आएंगे, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास, और भी स्पेशल क्लासेस, सेमिनार्स भी होते, स्पेशल सेमिनार्स किस लिए, भजन क्रिया सीखने के लिए, जानने के लिए। ये मंदिर आते केवल दर्शन के लिए थोड़े ही आते, मंदिर में आके हमको सीखना समझना होगा। हम आए और दर्शन करके चले गए, कुछ ज्यादा पल्ले नहीं ज्यादा पड़ेगा, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। उस भगवान भगवान के संबंध में कोई जानना चाहता है तो भगवान को देख देख के कोई ज्यादा नहीं समझ में आएगा। वैसे ये कुछ खाली फुकट तो नहीं है, भगवान का देखना से भी लाभ तो है ही, लेकिन वैसे अधिक सुन, जैसे सुनेंगे और फिर देखेंगे भगवान को, तो अधिक भगवान को पहचानेंगे। उस भगवान आपसे कुछ आदान प्रदान होगा आपके साथ भगवान का, लेकिन श्रवण की आवश्यकता है। जितना भी हम लोग श्रवण करेंगे, भगवान आपसे आपका संबंध, योग कुछ संबंध प्रस्थापित होगा, कुछ भाव कुछ। तो आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, भजन क्रिया फिर केवल सीख के सुन के गए लेकिन कुछ अमल नहीं किया तो फिर लाभ नहीं होगा। तो हनी की बोतल है, शहद है, इसमें उस पर ऊपर लिखा है, महात्म्य लिखा होता है बोतल, तो ये मधु है, मीठा है, ये है, ये पेड़ से मधु, ये और कई कहां से, कई से मधु, कई किस्म का मधु, ऑस्ट्रेलियन हनी या रेगिस्तान में तो हनी, इज नो हनी, ट्रीज भी नहीं है, मधुमक्खी भी नहीं है कहां से। तो वह तो उसको पढ़ने के बाद हमने पढ़ तो लिया कि मधु शहद क्या है, मीठा है शहद, मीठा है शहद, मीठा है, हमने पढ़ लिया या रट लिया, लेकिन क्या नहीं किया, उसका ढक्कन खोल के आस्वादन नहीं किया, तो हमारा अनुभव ज्ञान अधूरा ही रह गया, आस्वादन ही नहीं किया। उसी प्रकार हरि नाम का महात्म्य तो सुना लेकिन हरि नाम कहा नहीं कभी। तो सत्संग में गए, साधु संग में गए, भजन क्रिया को सीखा, तो फिर भजन क्रिया करनी, क्रियाएं भजन की क्रियाएं जो है करनी हो, तो ऐसा करेंगे तो फिर होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो हमें परिवर्तन आएगा और उसको कहा है अनर्थ निवृत्ति शात। अनर्थों से हम लोग मुक्त होंगे। अनर्थ अर्थ मतलब तो सम अर्थ मतलब सब्सटेंस कुछ उपयोगी बात। वैसे अर्थ कहते हैं हम लोग उसे अर्थ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझते हैं। अर्थ अर्थव्यवस्था। लेकिन अर्थ तो हुआ अर्थपूर्ण। दैट मेक्स सेंस। अर्थ अर्थहीन अर्थहीन अनअर्थ अर्थ नहीं है जिसमें उसको क्या कहते हैं अनर्थ। तो अनर्थ कई प्रकार के अनर्थ है। कई विचार भी अनर्थ होते हैं। कई व्यवहार भी हमारे अनर्थ होते हैं। कई कृत्य हमारे अनर्थ होंगे। और क्या क्या अनर्थ होता है। विचार अनर्थ हो सकते हैं। हमारे विचार ही अनर्थ तो फिर फिनिश्ड क्या। हमारे विचार ही अनर्थ। वैसे व्यक्ति के विचार उसका एक प्रकार से क्या होता है इसेंस सार होता है। कौन व्यक्ति कौन है हु इज हु का पता लगवाने के लिए उसको क्या कहते हैं गिव अ माइक्रोफोन। उसको बोलने दो। उसके बोलने से पता चलता इज अ वाइज मैन और ही इज अ फूल। मतलब व्यक्ति की पहचान किससे रूप से भी आज लोग अधिक तो रूप से ही करते हैं पहचान। लेकिन असली पहचान तो इसके उसके विचारों से किस विचार का है। तो विचार कहां से मुख से निकलते तो उसको बोलने दो तो पता चलता है। तो विचार ही अनर्थ हो सकते हैं। अनअर्थ यूजलेस विचार इसका कोई उपयोग नहीं। न श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे भगवान अर्जुन ने कहा। श्रेय और प्रेय की बात वैसे श्रेयस और प्रेयस कहा। दो प्रकार के विचार होते हैं। एक विचार होता है श्रेयस कहते श्रेयस दूसरा प्रेयस। श्रेय आपने नाम सुना है। श्रेय नाम सुना है कि बिल्डिंग का नाम भी लोग देते हैं या बच्चों के नाम भी देते हैं। श्रेयस कहते श्रेयस 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 लेकिन प्रेयस नहीं कहते। बिल्डिंग का नाम कोई प्रेयस होता है। शब्द तो दो एक दूसरों से जैसे जुड़वा जुड़वे अस्त ना दो एक, लेकिन एक का उपयोग होता है दूसरे का उपयोग नहीं होता। लेकिन दूसरा क्योंकि दूसरा शब्द ठीक नहीं है। प्रेयस प्रेय मतलब अभी अभी अच्छा लगता है ना फिर उसको मैं करूंगा उसको मैं खाऊंगा इमीडिएट बेनिफिट जस्ट डू इट की जो बात है सोचना भी नहीं करना है बस। अच्छा लगता है ना लगता है ऐसे चलता है लगता है अच्छा लगता है तो खाओ पियो करो जाओ सारी क्रियाएं होगी। कैसे कौन प्रेरित कर रहा है अच्छा लगता है फील्स गुड। ये सब किस में आएगा ये प्रेयस में आता है। हाँ लगता है अच्छा लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये सोच के फिर साधु शास्त्राचार्य अथॉरिटीज प्रमाण पीछे का औरों का अनुभव ये सब का विचार करके जब व्यक्ति कहे नहीं नहीं ये करूंगा ये नहीं करूंगा मैं तो न श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। आप तो मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हो हे प्रभु किंतु मुझे तो इसमें कोई श्रेय तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ मेरा कल्याण होगा ऐसा अर्जुन वैसे भ्रमित जो अर्जुन थे मोहित जो हुए थे इसीलिए उसको उनको पता नहीं चल रहा था इस युद्ध से इस संसार का क्या कैसे कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने जो कहा वो सही नहीं है। तो हुआ इस संसार में श्रेयस और प्रेयस में बढ़ सकता है हमारे विचार हमारे कार्यकलाप एक्टिविटीज या श्रेयस प्रेयस। अधिकतर लोग श्रेयस में फंसे हैं न प्रेयस, प्रेयस से प्रभावित होते हैं। पहले करेंगे बाद में सोचेंगे, देखा जाएगा, देखा जा, किसने देखा है ये भाषा, हु हैज सीन। तो जो अनर्थ है इस प्रकार के विचारों के अनर्थ, और विचार ही तो प्रेरित करते हैं हमको, तो कार्य कई सारे अनर्थ कार्य, अनर्थ भोजन, अनर्थ 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 निवृत्ति। तो इन अनर्थों की निवृत्ति होगी, अनर्थों से हम लोग निवृत्त होंगे, मुक्त होंगे। क्या करने से? भजन क्रिया का यह फल है। भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति होगी, और जब अनर्थों से हम निवृत्त हो गए तो फिर निष्ठा को प्राप्त की, फिर हमारी श्रद्धा कैसी? दृढ़ श्रद्धा। फिर हम लोग आगे ही बढ़े, वहां से हम लोग आगे ही बढ़ने वाले हैं, आसक्त होंगे इस भजन में, प्रभु की सेवा में, फिर रुचि विशेष आस्वादन होगा इस भक्ति का, हरि नाम का, भक्ति के कार्यकलापों में आनंद रुचि, और फिर भाव, और भाव से प्रेम की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो अनर्थ है बहुत बड़ा विघ्न है हमारे आध्यात्मिक जीवन का, मतलब पीछे के जो हमारे जो कर्म है, जो भी किया जब हम अनाड़ी थे, या जब मार्गदर्शन नहीं था, संसार के संग में थे इस जन्म में, पिछले जन्मों के भी, तो उनसे हम लोग बनते हैं आज। आज जो भी हम है, हमारे इस जन्म और पूर्व जन्म के सारे कार्यकलाप, विचार, आहार विहार का क्यूम्युलेटिव इफेक्ट, इसका सारा प्लस माइनस करके जो परिणाम है वो हम अब है। तो इससे मुक्त होना है, तो वह ये सब अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, ये विघ्न है हमारे जीवन में, बहुत बड़े विघ्न है। जिसने उसको पार कर लिया, उसके परे पहुंच गया, और पहुंच गया, मानो एक दीवार है, तो अपहिल टास्क जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो जब तक हम लोग शिखर तक नहीं, शिखर पर नहीं पहुंचे, तो क्या है वो टास्क, कैसे कहते हैं, अपहिल टास्क। फिर वहां चढ़ गए तो फिर गाड़ी या तो ऐसे ही जाती है, सीधी जा रही है फ्लैट, या नीचे जाना तो वहां से और आसान होता है। तो अपहिल टास्क, तो एक समय हम लोग वो निष्ठा तक पहुंच गए, और बीच में ये अनर्थ वगैरह, तो पहुंच गए, फिर पहुंच गए, वो पहुंचा हुआ महात्मा, पहुंचा हुआ महात्मा, मतलब अनर्थों से परे है। फिर इन इन अनर्थों से मुक्त होना है, तो हथियार क्या है, साधन क्या है, उपकरण क्या है, उसे शब्द ही है, शब्द ही है, जिसको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हर वक्त हमको शब्द की ओर आना होगा, और उसमें भी कौन सा शब्द, ये शब्द जो है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये शब्द, ये श्रीमद् भागवत के शब्द वचन, गीता के वचन, ये जो शब्द है, शब्द परब्रह्म, इनके आश्रय से तुम लोग इन अनर्थों से मुक्त होके निष्ठा से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी उन्हें विनाश की धमकी दी जाती है, उन्हें मतलब जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जो इस भगवत वाणी का संदेश का जो प्रचार करते हैं, उनको जब धमकी दी जाती है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, जैसे राजा परीक्षित की कि ये तो विषय चल रहा है। ऐसी मूर्खतापूर्ण धमकियां निपट भौतिकवादी पुरुषों द्वारा दी जाती है। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वह निश्चित रूप से अति दैवी शक्ति से पूर्ण था और भौतिक जगत की कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने में समर्थ न थी, किंतु सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक तथा अपनी अहितु की कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने एक और भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंशज को बचाने के लिए उसे रोकने में समर्थ हुए। वैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो अभी बचने का कोई संभावना नहीं रही थी, तो इस स्थिति में भगवान ने अपने स्वयं ही राजा परीक्षित की रक्षा की, क्योंकि वे दो कारण बताए, विशुद्ध भक्त थे और वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी थे वे। ये दो कारण ध्यान में लेकर भगवान स्वयं ही विष्णुना प्रभ विष्णुना उन्होंने अनु रातः अनुग्रहार्थाय अनुग्रह किया रातः तो परीक्षित महाराज पर। जब दैवेन प्रतिघातेन जब अश्वत्थामा ने प्रहार अस्त्र को छोड़ा था तब क्वेश्चंस योग जो जो मुक्त कर सकता है हमको संसार से। कृष्ण स्वधामोपगते, कृष्ण अपने धाम गए धर्म ज्ञान आदि भी सह, और साथ में ले गए धर्म को और ज्ञान को और वैराग्य को। इस प्रकार ये जो सूची है इन सब को ले गए। श्रेयस प्रेयस हाँ नहीं, जैसे प्रेयस कम होगा, जब प्रेयस कम होगा तो श्रेयस बढ़ेगा ना, इमीडिएट बेनिफिट या अभी अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, इंटेलेक्चुअल बीइंग मैं हूं तो संसार के मैं एक थिंकर हूं तो आई फील गुड, तो ये जैसे कम होगा ये प्रेयस, तो उसी के साथ तो श्रेयस की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो फिर वहां अच्छा लगने लगेगा, तो वो अच्छा लगना अच्छा है क्योंकि वो अच्छा ही है, उसमें हमारी अच्छाई है। जब कर रहे हैं तो जब करने में अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी गुड, आनंद आ रहा है, तो ये अच्छा है, ये स्टेप फॉरवर्ड है। तो जब तक उस क्षेत्र के बातों में कार्यकलापों में जो श्रेयस की ओर है, हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट की जो बातें हैं उसमें जब तक हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो इस संसारिक या इमीडिएट या प्रेयस की बातों में जो अच्छा लगना है वो बंद नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड, हाँ, भगवान की तरफ संसार श्रेयस श्रेयस मतलब एक ऊपर और एक नीचे की ओर विनाश की ओर ले जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् ये सब ये प्रयस की प्रयस हो गया। तो हर बात विनाश की ओर एक एक कदम तो एक तो हायर टेस्ट जिसको कहते हैं वैसे या रसोवर्जम रसोप्यश परम दृष्ट्वा निवर्तते परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो हायर टेस्ट जब आएगी आध्यात्मिक जीवन में जो आध्यात्मिक जीवन के श्रेयस कार्य है श्रेयस श्रेष्ठ है तो उसी से तो हम लोग फिर उसको छोड़ सकते हैं। रसवर्जम रसोपियश उसमें पहले का रस हमने लिया है उसका स्वाद कुछ स्मरण भी है कुछ आकर्षण भी है लेकिन वो तो भी हम लोग जा रहे हैं श्रेयस की ओर। यह प्रयास के कार्य तभी छोड़ पाएंगे वैसे हम लोग जब हम लोग श्रेयस तो श्रेयस के जो कार्य है केवल ऑफिशियल कार्य करने से ऑफिशियल प्रीचर ऑफिशियल ब्राह्मण ऑफिशियल नो जो आस्वादन कर रहा है जो इसको अनुभव कर रहा है जो हमने कहा उस शहद की बोतल पर जिसने पढ़ा तो है ये शहद मीठा है केवल पढ़ने से नहीं चलेगा उसको जब वो आस्वादन करेगा और शहद को मधु को तभी वैसे फिर दूसरे जो स्वाद है उनसे उनको ठुकरा सकता है। इस संसार के कई जो स्वाद है कई प्रकार के आनंद है प्रजल्पानंद क्या है प्रजल्पानंद कई सारे तो ये त्यागना त्याग तब सकेंगे हम लोग जब हायर टेस्ट है। तो केवल थियोरेटिकल ज्ञान से नहीं होगा इसमें अनुभव करना होगा आत्मा को अनुभव करना होगा तभी वो छोड़ सकता है। राधा कृष्ण भजन आनंदे न मत्तालिको राधा कृष्ण के भजन के आनंद में जो मस्ती है उसका कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ पहचान या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पहला अपना अनुभव अगर है तभी हम संसार के जो तुच्छ जो स्वाद है ग्रहमेधी सुखम ही तुच्छम कहा है ग्रहमेधियों का उसमें भी मैथुन मैथुनानंद वो तुच्छ है उसका अनुभव तब करने लगेगा जब उसको हायर टेस्ट ये हरि नाम का आनंद भक्ति का आनंद कीर्तन का आनंद भगवान के प्रसाद आनंद प्रसाद का आनंद साधु संग आनंद इनसे आनंद जब हमारा अपना अनुभव औरों का जो भी होगा सिक्स गोस्वामी का है प्रभुपाद का भी था वो आपके लिए अपना अनुभव की आवश्यकता होगी। उन्होंने अनुभव किया उसे आप प्रेरणा जरूर प्राप्त कर सकते स्फूर्ति जरूर प्राप्त कर सकते हो लेकिन आपको स्वयं को अनुभव करना होगा आनंद का आपकी आत्मा को तभी हम लोग संसार संसार की उत्थुक सकते तुच्छम। प्रभुपाद ने इस जब इस श्रीमद् भागवत का जो तुच्छम वाला ग्रहमेदी सुखम ही तुच्छम जब कह रहे थे प्रभुपाद थूके थू थू, भक्तों ने जब देखा तो थूक रहे हैं। तो साधारण व्यक्ति ऐसा थूक नहीं सकता, क्योंकि तो हर एक का अनुभव करना होगा, जो अनुभव करेगा स्वयं वो आगे बढ़ सकता। इसीलिए केवल ज्ञान नहीं कहा, ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्म कर्म स्वभावशम। जो पाखंडी होते हैं या बनावटी होते हैं साधु या वो पंडित तो हो सकते हैं, ज्ञान खूब हो सकता है और उनको प्रभावित भी वे कर सकते हैं अपने भाषणों से, वाक पुष्पों से, लेकिन डे टू डे लाइफ में उनका और कुछ कार्यकलाप, और भी कई ध्यान, और ही कई रुचि उनकी होती है, क्योंकि उन्होंने हायर टेस्ट डेवलप नहीं की है। तो यह तो यह टू हर एक को अपना उड़ान भरना होगा, हर पंछी को। उसके लिए मदद है या उसके लिए सब व्यवस्था है या आदर्श है, प्रेरणा है, मार्गदर्शन ये सब है, लेकिन ऊपर उठना होगा, उड़ान भरना होगा हर एक को, हर व्यक्ति को, हर भक्त को, हर शिष्य को, हर अनुयायी को। कौन सा काल?
परीक्षित महाराज जी का।
वैसा ना है, देश तो ऐसे ही चल रहे थे, क्योंकि पृथ्वी पर ही तो वे थे। स्वर्ग में जाओगे तो फिर वो मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स ऐसा कुछ होगा, लेकिन कथा का श्रवण तो इस धरातल पर, गंगा के तट पर, हस्तिनापुर के बाहर, तो 24 घंटे का ही तो दिन उस समय भी चल रहे थे। कलयुग 30 वर्ष का था। भगवान स्वधामोपगते, भगवान के अपने धाम प्रस्थान करके 30 वर्ष बीत चुके थे जब राजा परीक्षित ने कथा का श्रवण किया। तो 7 दिवस कथा सुने तो जन्मे। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तब वे गर्भ में थे, तो और युधिष्ठिर महाराज उस कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर महाराज सम्राट बने। उन्होंने क्या 36 ईयर्स, कितना कितने साल उन्होंने युद्ध किया, आई मीन राज किया, 36, तो 36 साल। तो वैसे राजा परीक्षित जब 36 साल के थे तो वे सम्राट बने ना, क्या कह रहा हूं मैं, 36 साल तक राज किया। तो 36 साल तक राज किया युधिष्ठिर महाराज ने, तो और उनका राज 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 युधिष्ठिर महाराज राज तब तक चलता रहा जब तक भगवान इस संसार में थे, लगभग ऐसे थोड़ा थोड़े कुछ महीने अधिक हो सकते हैं। तो वो काल वो कितने साल का, कोई ज्यादा नहीं था, 36 साल। तो जब वे राजा बने, राजा परीक्षित राजा बने, तो भगवान ने जैसे प्रस्थान किया तो 5 पांडव ने वो रिटायर्ड हो गए, उत्तर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। आगे ये चर्चा आएगी, अभी तो परीक्षित महाराज का जन्म ही हो रहा है। तो राजा परीक्षित तो भगवान ने प्रस्थान किया, कलयुग प्रारंभ हुआ। भगवान ने प्रस्थान किया तो पांच पांडवों ने वो सेवानिवृत्त हुए। पांच पांडव सेवानिवृत्त हुए, रिटायर्ड हुए, तो राजा परीक्षित राजा बने। और 30 साल जब कलयुग था, 30 साल पुराना, तब कथा हुई, पहली कथा श्रीमद् भागवत की। तो 66 ऐसा कुछ ईयर्स के जब राजा परीक्षित थे, तब उन्होंने कथा श्रवण प्रारंभ करके 7 दिवस 7 रात्रि वो कथा का श्रवण किए। जैसे कोई भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा था इंटरनेट पर कि 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवतम में है, और वैसे गिनोगे तो 18,000 भी नहीं मिलेंगे, कुछ कम ही, थोड़े से कम है। तो मान लो टेक्निकली 18,000 वर्सेस हम कहेंगे तो 7 दिवस तो नहीं लगते हैं, आप समझ रहे प्रश्न को। तो 7 दिवस कैसे बिताए? भगवत गीता के 700 श्लोक कहने में कुछ 1.5 घंटा कृष्ण और अर्जुन उस संवाद में बिताए थे। 700 श्लोकों के लिए से इवन 1 आवर, और फिर 1000 श्लोक है तो 1.5 घंटा, तो 18,000 श्लोक है तो 24 घंटे, 1.5 times। इतने समय होना चाहिए था, लेकिन ये रात और दिन, 7 रात्रि 7 दिवस, ये जो कथा कैसी चलती रही, प्रश्न समझे? तो उत्तर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा भी 7 दिवस 7 रात्रि तक कथा चलती रही, लेकिन डे एंड नाइट्स। तो अब का जितना 60 मिनट्स का 1 घंटा और इतने घंटे, और फिर 12 घंटों का, 3 12 घंटों का, ऐसा चल रहा था इस उस समय भी। दर्शने साधु, साधु से शब्द प्राप्त करना चाहिए, ऐसे यहां चर्चा हो रही थी। तो आचार्यों को के गीतों में हम सुनते हैं कि दर्शन ही पवित्र, आपके दर्शन मात्र से आप पवित्र कर, ये आपका गुण है, तो ये कैसे समझा जाए। वहां पर भी दर्शन को, उनके वचन ही दर्शन है, आपके दर्शन मात्र से, मतलब आपने कहे हुए वचन मात्र से व्यक्ति मुक्त होगा। या उन्होंने पहले अगर कोई विचार कहे हैं तो उनके दर्शन मात्र से या उनके उपस्थिति में हमको वो सारे शब्द, उनका स्मरण होगा। उन्होंने पहले कुछ आदेश उपदेश किया था तो हम भूल बैठे थे, लेकिन जब उनको समक्ष देखा तो पुनः स्मृति हुई, मुझे 16 राउंड्स करना है। जब तो उन्होंने कहा तो नहीं अभी चैंट 16 राउंड्स डेली, लेकिन वो जो बात कही थी वो गूंज उठी और सारा स्मरण हुआ मुझे, तो उनके दर्शन मात्र से। वैसे कई लोग वैसे कहते हैं कि हम कई प्रश्न मन में होते हैं, उन प्रश्नों के साथ आते हैं, लेकिन वैसे जब आपकी उपस्थिति में उनके जवाब मिल जाते हैं, या आपने कुछ प्रवचन सुनाया तो मुझे लगा कि आपने मेरे प्रश्न का ही उत्तर दिया, मेरे लिए आपने, तो ऐसे भी कोई व्यवस्था। या भगवान कुछ विशेष वो व्यक्ति आया है तो वह नमस्कार भी कर रहा है बारंबार, तो ऐसे व्यक्ति के लिए गुरुजन प्रार्थना करते हैं भगवान को। तो भगवान कुछ अपना कृपा कटाक्ष ऐसे भक्त की ओर, साधना सिद्धि भी है और कृपा सिद्धि भी बताई, कुछ विशेष कृपा करते हैं गुरुजन। लेकिन अधिकतर भक्त चाहते हैं कि उसे कृपा सिद्धि हो जाए, साधना सिद्धि की ओर कृपा सिद्धि हो जाए। तुम्हारी दीक्षा हुई, किसने साधना कैसी चल रही है? तो शिष्य ने कहा, हा क्या मैंने गुरु किया है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा जब साधना वगैरह कैसी चल रही है, तुमने मंत्र लिया तो? नहीं नहीं, क्या कह रहे, गुरु किया है मैंने। गुरु भी करना है फिर साधना भी करनी है? उसने उसे गुरु कर लिया, गुरु कर लिया, फिर मुझे कुछ नहीं करना होगा, हाँ गुरु करेगा सब। तो ऐसे दर्शन का भी कुछ पावरफुल आचार्यस होते हैं तो उनके उनके उपस्थिति में वहां से वो कैसे शक्ति को ऐसा विस्तृत करते हैं, वो फैलाते हैं, ऐसा वातावरण बनता है। तो फिर सुने हैं वो वचनों को हम लोग भली भांति समझते हैं, तो दोनों भी है, उनके वचन भी है उनका दर्शन भी है, तो दोनों भी पवित्र कर रहे हैं। कुछ रेडिएशन दे स्प्रेड, कुछ उनके जहां तक उनका फील्ड है तो वहां तक तरंगे है, तरंगे है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो, मतलब संग उतना ही मिला लेकिन उनके वचन में से कई लिखित भी पढ़े या औरों से सुने तो उसके स्रोत तो प्रभुपाद ही है, उनसे नहीं सुना लेकिन और किसी से सुना, परंपरा में सुना। तो और जो जितना दर्शन मात्र से वो प्रेरणादायक बना तो वो प्रेरित करता है, वो घटना वो मिलन वो उसे प्रेरित करता है। तो प्रभुपाद भी कहा करते थे कि भक्ति सिद्धांत जी का उनको भी ज्यादा संग नहीं मिला, वैसे अन्य कई सारे शिष्य ब्रह्मचारी सन्यासी तो साथ में ही ट्रैवलिंग प्रीचिंग भ्रमण, श्रील प्रभुपाद गृहस्थ होने के नाते उनका उतना संग नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन साथ में संग करना कभी कभी, फिर प्रभुपाद समझाते कि कुछ शिष्य में से शोषण भी करते हैं गुरु के शक्ति को, या कुछ पशु पशु के गोचड़ी 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 लगा मतलब टिक्स दे सक, तो पशु जहां भी जाता है जोंक, वो जोंक भी साथ में जाती है, लेकिन सब समय जाती हुई क्या करती है, खून चूस लेती है। साथ में तो है, हाँ साथ में संग है लेकिन तो चूस रही है, तो ऐसा संग तो ये अनर्थ हुआ, ये तो भयानक। तो संग है लेकिन क्या उसका कैसे कैसे उपयोग किया जा रहा है,
कोई गुरु भोगी है, कोई गुरु त्यागी है, गुरु द्रोही है, गुरु सेवी है, तो थोड़ा ही समय है, लेकिन उसका हमने कैसे लाभ उठाया, कैसे प्रेरणा प्राप्त किया। हाँ, वो समझाते हैं ना, समझाते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो प्रकाशित करने वाले वे है एज अ कैटलिस्ट। कई बार कैटलिस्ट होता है केमिस्ट्री में, वो स्वयं तो इन्वॉल्व नहीं होता है वो क्रिया एक्शन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में, लेकिन उसकी उपस्थिति से वो एक्टिविटी होती है या अधिक गति से होती है। जब वाटर बनाते हैं, टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां KLMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट नाम का जो कैटलिस्ट वहां होने से H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होता है या उससे जल बनता है, दो एलिमेंट्स तत्वों को से एक मॉलिक्यूल बना, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कैटलिस्ट नॉट टेकन, तो उस प्रकार हमारे आचार्य इस प्रकार उनके कृपा दृष्टि, उनकी प्रार्थना, उनके आशीर्वचन, तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश है।